नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलदार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, मौत की सुनसान सुनी वादियों में फिर, कि नूतन सर्जना के राग भर दे, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर, दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशाले जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। झरो 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 जंगम जग प्रांगण में, जीवन संघर्षम में, नवयुग परिवर्तन में, मन के पीले पत्तों झरो झरो झरो। वो जो पुराना है, वो जो अतीत हो गया है, वो जो सूख गया है, वो जो व्यर्थ है, झरो जंगम जग प्रांगण में, जीवन संघर्षम में, नवयुग परिवर्तन में, मन के पीले पत्तों झरो झरो झरो। सन सन शिशिर समीरन देता क्रांति निमंत्रण, यह जीवन विस्मृति क्षण, जीर्ण जगत के पत्तों टरो टरो टरो। सन सन शिशिर समीरन, सन सन शिशिर शीत अत्यंत ठंडा, समीरन हवा, हे ठंडी हवा देता क्रांति निमंत्रण, यह जीवन विस्मृति क्षण, जीर्ण जगत के पत्तों टरो टरो टरो। टाल दो इस क्षण को, इस विस्मृति के क्षण को, कंप कर, उड़कर, गिरकर, दबकर, पिसकर, चरमर, मिट्टी में मिल निर्भर, अमर बीज के पत्तों मरो मरो मरो। तुम पतझर, तुम मधुजय, पीले दल नव किस लय, तुम ही सृजन वर्धन लय आवागमनी पत्तो सरो सरो सरो, जाने से लगता भय जग में रहता सुख में, फिर आओगे निश्चित निज चिरत्व से पतो पत्तो, डरो डरो डरो, जन्म मरण से होकर जन्म मरण को खोकर, स्वप्नों में जग सोकर मधु पतझर के पत्तो, तरो तरो तरो। सुमित्रानंदन पंत की ये कहानी, ये पत्तों की कहानी है। कवि पत्तों की तुलना जीवन से कर रहा है। ये क्षण है क्रांति का, ये क्षण है नवीनता का। जो कुछ पुराना है, जो कुछ व्यर्थ है, जो कुछ बीत चुका है, जो अतीत है, अब उससे बाहर निकलो। पतझड़ का मौसम है, गिर जाने दो सब कुछ जो व्यर्थ है और नई शुरुआत करो। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सुनी वादियों में फिर के नूतन सर्जना के राग भर दे, मौत शोक गीत तो भरी इन घाटियों में फिर धड़कती हिमशिलाए, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही। तो जीवन में कितना भी अंधेरा हो, रोशनी आएगी। ये प्रकृति की गति है, सब कुछ बदल रहा है। इसके लिए जहां हो वहीं से अब नई शुरुआत करनी है। उठो संग्रामी, हो जागो, उठो सर्जको, जागो। इनकलाबों के नए संस्करण गढ़ने का समय फिर आ गया है, नई क्रांति करनी। तो क्रांति की ये कहानी कहां पहुंची है, 39 में हम हैं। कल हमने प्रश्न देखे, वो किसी जिज्ञासु के प्रश्न नहीं थे, वो क्रॉस एग्जामिनेशन था। क्रॉस एग्जामिनेशन बाय लॉयर मिस्टर बालचंद। 59 प्रश्न है टोटल, जिसकी चर्चा कल हुई थी। तो यज्ञ कहाँ पहुंचा है अभी, कराची। कराची में कुछ बंगले लिए हुए हैं, वहां रह रहे हैं। कोर्ट से ऑर्डर आया है, ओम राधा गई, 5 कन्याएं वापस कराची आ गए। कराची की ये जो घर है, कहते हैं यहाँ पर 8-10 गायों को भी रखा था, 8-10। आज हम एक नया अध्याय को देखेंगे, एक और एक तूफान। हैदराबाद से यहाँ किस लिए आए थे, ताकि तूफान शांत हो जाए, पर तूफान ऐसे है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक के बाद एक, एक के बाद एक, पीछे ही पड़े हुए। संकल्प ही कर लिया है तूफानों ने, नया तूफान। तो एक नया तूफान आज, और 2-3 तूफान और बाकी, उसके बाद शांति होगी। फिर 10 साल के लिए, 10 साल की तपस्या, तब तक तूफान। अभी 2-3 तूफान और बाकी है, 2 या 3, जो कल परसों में चर्चा होगी। तो आज एक नए तूफान की चर्चा करेंगे। तो हम थे 1939 में, एक डेट हमने देखी थी 18 जनवरी 1939, जब हर और गंगे इनकी माताओं ने कोर्ट में केस फाइल कर दी थी। तो वो एक डेट हमारे पास है जनवरी की। अब उसके बाद की जो डेट है वो है मार्च। बीच में क्या हो रहा था, बीच में तपस्या जारी थी, बीच में वही दिनचर्या जारी थी, वही अमृत वेला। अमृत वेला नाम कब आया पता नहीं, परंतु यज्ञ के इतिहास का जो इनिशियल पार्ट है, फाउंडिंग पीरियड, इस सब में सिख लिटरेचर का ही प्रभाव है सब जगह। अमृत वेला शब्द सिख लिटरेचर में प्रयोग किया गया है। भारतीय लिटरेचर में शब्द है ब्रह्म मुहूर्त। 5 विकार, 5 शत्रु, 5 शत्रु या 5 रिपु, ये गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द है। इंडियन लिटरेचर में षड रिपु, 6 आलस और मद वगैरह जो भी है, पर ये सारे जो आते हैं मुहावरे, कहावतें, मां चमकता जब सितारा, सदगुरु, ये सारे जो शब्द है सिख लिटरेचर के शब्द है। अर्ली हिस्ट्री में सिख लिटरेचर का प्रभाव बहुत है और दादा लेखराज, ओम बाबा भी ये सब पढ़ते थे। तो आज हम एक नई घटना की चर्चा करेंगे जिसका संबंध अभी वर्तमान में भी है कहीं ना कहीं। तो ये कहानी है 7 मार्च की, अनदर स्टॉर्म। जिस समय बाबा का जन्म हुआ उसके ही इर्द गिर्द आसपास एक दूसरे महापुरुष का भी वहीं जन्म हुआ, टीएल वासवानी। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं इन्होंने सिंध की उन्नति के लिए, बहुत सारे महान काम किए और बहुत विद्वान, अत्यंत विद्वान, और सबसे बड़ी बात ब्रह्मचारी, विदेश से भी पढ़ाई की। इनकी माँ चाहती थी कि ये पढ़ाई करे और पढ़ाई करे, ज़्यादा पढ़ाई करे और शादी करे, पर उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। मैट्रिक किया, बीए किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जैसे पहले का सिंध जो है किससे जुड़ा हुआ था, बॉम्बे के अंडर था, और 36 के आसपास बॉम्बे से वो अलग हो गया, वही समय जबकि साक्षात्कार होने चालू हुए दादा लेखराज को। वो भी एक कारण था कि यहाँ का जो बिजनेस है अब समेट लो। सृष्टि चक्र बड़ा ही एक्यूरेट घूमता है, सारी घटनाएं एक साथ होती है। बीए किया, स्कॉलरशिप डीजे सिंध कॉलेज इन कराची, मास्टर्स डिग्री की, एमए लिया यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 1902, और उन्होंने कहा अपने माता को कि मुझे अपना सारा जीवन सेवा में लगाना है। माता ने कहा नहीं, तुम पहले और सफलता हासिल करो। उन्होंने मान लिया और फिर वहाँ टीचिंग जॉब का चालू कर दिया यूनियन एकेडमी में। माता जी चाहती थी कि इसकी शादी करे, पर उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मचारी रहना है, और फिर प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड फिलोसफी एट मेट्रोपॉलिटन कॉलेज इन कोलकाता। ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री है इनकी, मतलब सभी जगह से। इन पर एक मूवी भी है इनके बचपन की, जब वो थावर छोटा बालक है, थावर उनका नाम था, थावरदास टी। बचपन से एक चीज़ इनको कभी भी पसंद नहीं आई, वो नॉनवेज फूड। देवी की पूजा करते थे, इसको लेके जाया करते थे, प्रसाद देते थे, वो कहते मैं नहीं लूँगा, क्योंकि देवी कैसे प्रसन्न होगी। इसलिए इनका जो बर्थडे है 25 नवंबर, आज दिन तक ये सेलिब्रेट होता है कैसे, मीटलेस डे, इंटरनेशनल मीटलेस डे, वेजिटेरियन फूड ये मेन है। अभी जैसे बाबा 1950 में सारे सिंधी जो थे वो भारत में आ गए, ये भी इनको किसी की भी सिंधी की इच्छा नहीं थी अपनी मातृभूमि को छोड़ने की, पर आना पड़ा सबको। ये भी 1948 में वहाँ से पूना आ गए, तो अभी पूना में बहुत बड़ा इनका मिशन है, साधु वासवानी मिशन। और ये जो थे टीएल वासवानी, अभी उनकी जगह जो चलाते थे वो जेपी वासवानी जी, उनको दादा वासवानी कहते, दादी जान की उनसे बहुत मिली है कई बार, अभी उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया है 2018 में। तो ये जो व्यक्ति था साधु वासवानी जी, इनका एक ही उद्देश्य था कि स्त्रियां जो है उनको उठाना है, उनकी जो हालत है सिंध में बहुत खराब है। इस लक्ष्य से उन्होंने एक सत्संग की वहाँ चालू शुरुआत की, उसका नाम था सखी सत्संग, सखी सत्संग। और इस सत्संग में बहुत सारी स्त्रियाँ आती थी, सत्संग करती थी, उसी में बीच में उन्होंने सखी स्टोर चालू किया, जहाँ की वो जो स्त्रियाँ थी वहाँ कुछ सामान वो बनाती थी, और जो वहाँ की महिलाएं थे उनके लिए बनाती थी, विमेन स्टोर, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कहते हैं 1910 में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, जो कांग्रेस की मीटिंग थी वहाँ, तो उस समय 3 ऐसे पर्सनालिटीज़ थे भारत के जिनका बहुत नाम था, जो कि इंडिपेंडेंस से जुड़े हुए थे, पहला महात्मा गांधी, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर एंड तीसरा साधु वासवानी। तो बाबा को इनके बारे में थोड़ी आइडिया पहले ही थी, क्योंकि ये रहते थे कहाँ, कराची में, प्रोफेसर थे, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ इन्होंने। और एक बहुत बड़ा काम जो कर दिया वो था मीरा स्कूल, मीरा मूवमेंट ऑफ एजुकेशन इसको कहते हैं। आज भी पूना में सेंट मीरा स्कूल है, स्त्रियों की गर्ल स्कूल जो थी, मीरा स्कूल ऑफ एजुकेशन। ये इस पर बहुत इन्होंने कहा, दो वो 1933 में इन्होंने खोली थी। तो ऐसे ये व्यक्ति कि जिनको बहुत, जिनका लोग बहुत सम्मान करते थे, और इनकी एक ही इच्छा थी। इनका एक वाक्य है, आई हैव बट वन टंग, वो कहते हैं मेरे पास एक ही जबान है, यदि मेरे पास लाखों लाखों करोड़ों जबान होती तो मैं एक ही शब्द दोहराता केवल, गिव गिव गिव, दो दो दो, बांटने से ही बढ़ता है। जितनी विश्व की सेवा करोगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे, उतना अच्छा, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। अगर मेरे पास मिलियंस मिलियंस जबान होती तो मैं एक ही शब्द कहता, दो 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 दो। तो ऐसे महान व्यक्तित्व हुए। परंतु एंटी ओम मंडली वहां भी पहुंच गई है और बार बार इनसे मुलाकात की, बार बार इनको समझाया बताया कि ये देखो क्या हो रहा है, यहां पर कन्याओं को रिटेन किया जा रहा है। इनका पूरा जीवन का लक्ष्य था स्त्री का उद्धार, स्त्री की मुक्ति। इसके लिए स्कूल खोली स्त्रियों के लिए, उनको पढ़ाते थे, सब कुछ करते थे। और उनको ये बताया गया, आपके स्कूल के जो स्त्रियां हैं ना अभी कन्याएं, वो धीरे धीरे करके ये जो लेखराज है ओम बाबा, ये सब अपने इधर ले लेगा, फिर आपका क्या होगा। पर इनकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई इधर ओम बाबा से या ओम मंडली के किसी भी व्यक्तित्व से, किसी भी व्यक्ति से। उनको जा जाके उनके कान कौन भर रहे थे, एंटी ओम मंडली, यही उनको जा जाके बताते थे, क्योंकि उनकी भी स्कूल थी स्त्रियों की, गर्ल्स स्कूल, और इधर भी। तो और उनको बताया गया वहां जबरदस्ती उनको रिटेन किया जाता है, डिटेन करते हैं वहां पे, पकड़ के रखते हैं उनके साथ, उनको हिप्नोटाइज करते हैं, बहुत कुछ उनको भड़काया गया समझाया गया। तो वो भी मन में प्लानिंग कर ही रहे थे कि मैं अभी एंटी ओम मंडली ज्वाइन कर लूं। तब दादा लेखराज ओम बाबा, उन्होंने कुछ बहनों को इनके पास भेजा। अगर देखा जाए तो यज्ञ इतिहास में अगर ये पूछा जाए कि सेवा कब चालू हुई तो ये थी सेवा का पहला कदम, ये पहला कदम था सेवा का, कि यहां पर बताया गया कि इनकी जाके सेवा करके आओ। बाद में 5-6 साल के बाद ये जो कन्याएं हैं इनको अपने अपने लौकिक घर भेजने वाले हैं, 5-6 साल के बाद, मतलब 46-47 में कहीं ना कहीं इस बीच। पर ये तो बहुत पहले, अभी तो हम 39 में हैं। तो उनको कहा गया, और किस दादी को कहा गया, चंद्रमणि दादी, 3-4 बहनों के साथ कहा कि इनके निवास पर जाओ और इनको बताओ। तो वो सारी बहनें गई और वो बहुत इम्प्रेस हुए, उन्होंने स्वागत किया, और वो चंद्रमणि दादी ने उनको सब कुछ समझाया कि ये ओम मंडली है क्या और यहाँ पर किस तरह का ज्ञान दिया जाता है। तो जिस ढंग से उन्होंने समझाया और उनके वो पोशाक श्वेत वस्त्र, वो बहुत इम्प्रेस हुए। पर फिर भी उनके मन में था, बट व्हाट अबाउट द बिलीफ, मतलब तुम्हारी जो बिलीफ सिस्टम है वो अलग है हिंदू धर्म के। पर उन्होंने उसको भी बहुत डिटेल में समझाया और ऐसे बताया कि जैसे जो बातें उन्होंने बताई, क्योंकि ये जो टीएल वासवानी जी है ये बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है। उनकी कम से कम कितनी किताबें हैं, सिंधी और इंग्लिश में ढेर सारी किताबें है, इंडिया रीजन, अवेक यंग इंडिया, इंडियाज एडवेंचर, इंडिया इन चेन्स, सीक्रेट ऑफ एशिया माई मदरलैंड, बिल्डर ऑफ टुमारो, अपोजल ऑफ फ्रीडम, ये उनकी इनकी किताबें हैं। सारे उपनिषद पर इनकी मास्टरी है, इंग्लिश के प्रोफेसर है, ये बहुत विद्वान व्यक्ति है। 22 साल की उम्र में प्रोफेसर बना है वो तो। पर ये जब हो रहा है तब इनकी उम्र जो बाबा की उम्र है आसपास वही उम्र है इनकी, इनका क्योंकि जो दिखाया है आसपास 5-6 साल का डिफरेंस है। तो उन्होंने कहा व्हाट अबाउट द बिलीफ, तो उन्होंने वो भी समझा के दिया। और बाद में वो जो बहनें थी उन्होंने अपने अनुभव सुनाए हैं कि क्या क्या हमको साक्षात्कार हुए, तो वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। और फिर लास्ट में बहनों ने आमंत्रण दिया कि बाबा लेखराज, ओम बाबा आपसे मिलना चाहते, तो उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति से तो मिलना बहुत ज़रूरी है, मैं तो अभी मिलने को तैयार हूँ, चलो अभी चलता हूँ मैं, अभी के अभी चलो मुझे मिलना है। इतनी महान हस्ती इतना महान कार्य कर रहे, क्योंकि वो भी तो वही कार्य कर रहे थे, उनका भी लक्ष्य था स्त्री का उद्धार करना। कहाँ करना? सिंध में, जहाँ पे पतन हो चुका है। तो वो जाते हैं उनके साथ, पर उनके जो शिष्य होते हैं वहाँ वो डर जाते हैं, वो उनको समझाते कि नहीं जाना नहीं जाना, वो कहते कोई नहीं मैं आ जाऊँगा अभी, और घुसते बाहर निकलते हैं कार में बैठते हैं। फिर तो सारे के सारे ओम एंटी ओम मंडली वाले और उनके सारे शिष्य घेर लेते हैं, वो कहते हम आपको जाने नहीं देंगे, वो कहते मैं एक घंटे में आ जाऊँगा, पर उनको एक घंटे का भी भरोसा नहीं, क्योंकि एक घंटे में भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां जो जाता है लौट के नहीं आता है, वो बात तो आज तक भी सही है। जो ब्रह्मा कुमारी में एक बार गया वो लौट के नहीं आता है, गया सो गया। इसीलिए वो शिष्य, और एक दूसरी बात भी ये है कि वो शिष्य सोचते हैं कि ये अगर गए और ये वहीं रह गए तो हमारा क्या होगा। हम तो इनके नाम से चलते हैं, क्योंकि शिष्यों को भी तो अपना अहंकार होता है कि हम इसके शिष्य हैं। एक शिष्य दूसरे शिष्य से मिलता है तो क्या कहता है, हम उसके शिष्य, वो कहता है तुम उसके हम उसके, दोनों का अपना अहंकार इससे ही तो तृप्त होता है। अगर अपना गुरु ही चला गया तो हमारी पोजिशन क्या रहेगी। वो कार में बैठ जाते हैं, परंतु वो सारे शिष्य और वो सारे लोग उनको बाहर निकाल लेते हैं, नहीं जाने देंगे कुछ भी हो जाए। सीरियस कंसर्न का टॉपिक है उनके लिए ये, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक क्षण में भी कुछ भी हो सकता है। उनको बाहर निकालते साधु वासवानी जी, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बाद में आके बाबा से मिलूंगा, पर मुझे मिलना तो है ही, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से मिलना बहुत जरूरी है जो इतना महान कार्य कर रहा है। और वो चले जाते हैं। फिर ये सारे लोग अपना पुरुषार्थ तीव्र कर देते हैं, एंटी ओम मंडली वाले, क्योंकि मन का किसी एक कोने में जगह बन गई है, सॉफ्ट कॉर्नर निर्माण हो गया, अब कार्य बड़ा तेजी से करना पड़ेगा, क्योंकि जरा भी कमजोरी अगर है तो वो जो कहते हैं ना बाबा क्या, अंश से वंश पैदा हो सकता है। इसके लिए तुरंत पुरुषार्थ चालू किया, देखा सीखने जैसा है, जरा भी अगर कमजोरी है तो क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ को तीव्र कर देना चाहिए एकदम। इतना उनको भड़काया, इतना उनको भड़काया, और इतने न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे गए कि धीरे 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 वो फिर उनके साथ मिल गए। जगदीश भाई ने लिखा है अगर शायद एक बार भी इनकी मुलाकात एक बार भी बाबा से हो गई होती तो शायद इन्होंने ऐसा कभी नहीं कर किया होता। एक बार अगर मुलाकात होगी, ओनली वंस, पर वो ड्रामा में नहीं था, ड्रामा में वो पार्टी नहीं था। इसलिए 7 मार्च 1939 वो सारे ओम मंडली वाले हजारों लोग मिल गए, और कहां पर आक्रमण किया, ओम निवास क्लिफ्टन कराची, ये कराची का पहला आक्रमण था। भयंकर आक्रमण किया, पत्थर फेंके, पथराव किया, खिड़कियां तोड़ी, दरवाजे तोड़ी। कहते हैं कि वो रैम होता है ना, रैम, उसको क्या बोलते, भेड़ा, रैम पता है ना हिंदी में क्या कहते हैं उसको, भेड़ा ही कहते हैं ना, बड़ा सा होता है जो ये इधर है, हा? रैम रैम को ये होता है ना, इसको क्या कहते हैं, भेड़ या बड़ा होता है वो, मेंढा मेंढा, यस। ये मेंढे को लेके आए, और वो जो दरवाजा है उसको इस मेंढे ने जोर से टकराया और दरवाजा को तोड़ दिया। इसे कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। हम जो करते रहते ना, ये छोटे मोटे पुरुषार्थ है, इसलिए तो दरवाजा टूटता नहीं। तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए, सारा जोर, सारी शक्ति, बीसों नाखूनों का जो एड़ी से पाप चोटी तक का जोर लगा देना चाहिए। नो स्टोन अनटर्न्ड अंग्रेजी में कहते हैं, तो ऐसा मेंढे वाला जोर लगा देना। और जैसे ही वो सारे लोग, इंक्लूडिंग टीएल वासवानी दादा, वो जैसे अंदर घुस रहे थे, उतने में पुलिस आ गई और वैन में बिठा के सबको लेके चली गई। तो ये सब कब हुआ? 7 मार्च 1939, कराची। एक बहुत चीज, बड़ी चीज इसमें सीखने जैसी है, वो है ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। सुकरात था यूनान में, लोग उसके पास आते थे अच्छी अच्छी जूसी खबरें लेकर, रस भरी, चटपटी, मिर्च मसाले वाली। तो ऐसे ही एक दिन एक व्यक्ति आया सुकरात के पास, सोक्रेटिस के पास, और इतना उतावला हो रहा है उसको, वो बात बतानी है सुकरात। सुकरात ने कहा, एक मिनट, तुम जो मुझे बताना चाहते हो, यू विल हैव टू अंडरगो ये जो ट्रिपल फिल्टर टेस्ट है ना, इससे तुमको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला, ये जो बात तुम मुझे सुनाने वाले हो, ये अच्छी है या बुरी है? वो कहता है, वैसे तो खबर कोई अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी तो नहीं है, मतलब बताऊं? वो बोलते, रुको एक मिनट, ये जो तुम बताने वाले हो, ये सही है या गलत है? मतलब तुमने खुद अनुभव किया है कि कहीं से सुनी है? वो कहता है, मैंने, मेरा अपना नहीं है, मैंने सुना है कहीं से। तो कहता है, एक मिनट, सुनाने से पहले। वो कहता है, सुनाओ। नहीं, वेट। तीसरा, ये जो तुम सुनाने वाले हो, इससे मुझे कितना फायदा है? फायदा है कि नुकसान है? कहता है, फायदा तो ऐसा कुछ खास है नहीं आपको। कहता है, बस फिर स्टॉप, ये है ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। टेस्ट ऑफ गुडनेस, टेस्ट ऑफ ट्रूथ, टेस्ट ऑफ यूजफुलनेस। ये तीन चीजें अगर होगी तो ही मुझे वो सुनाना, नहीं तो मत सुनाओ। इसको कहते हैं ट्रिपल, इस तीन फिल्टर में से निकालना है, नहीं तो व्यर्थ चिंतन और परचिंतन और परदर्शन करने वाले और सुनाने वाले बहुत सारे बैठे हुए, तुरंत आके कान भरेंगे। तुमने सुना है क्या? क्या? उत्सुकता जागती है, कोई अच्छी न्यूज कोई लेके आता है, इतनी बड़ी न्यूज जो सबको पता है और मुझे पता नहीं, ये भाई की ट्रांसफर यहां से वहां हो गई, क्यों हुई, कैसे हुई, मुझे कुछ भी खबर नहीं, इतना मैं अज्ञानी, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे पूरा डिटेल, योग बाद में करेंगे शाम का, पहले ये इंपॉर्टेंट है। नुमा शाम का योग तो होते ही रहेगा, चलो थोड़ा घूम के आते हैं नक्की पर, थोड़ी बातें भी हो जाएगी। क्या वो अच्छी बात है, बुरी बात है? किसी और के बारे में कोई आकर बुरा सुनाता है, गलत सुनाता है। दादी जानकी कहती है, मैंने यज्ञ के शुरुआत में दो लोगों से दोस्ती की थी, एक थी किकनी बहन और एक थी आनंदी बहन। आनंदी बहन, आनंदी माता, वो एक ऐसी व्यक्ति की जिसने सभी यज्ञ की यज्ञवत्सों को हिंदी सिखाई, हिंदी नहीं आती थी ये लोगों को। आनंदी माँ इज द हिंदी टीचर। दादी जानकी कहती है कि मैं, ये जो किकनी बहन थी, उसका उसका उसको केवल ज्ञान योग में रस था, इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे बचपन से, जब से मैं आई तब से मैंने पहले लेट हो गई मैं तो, क्योंकि दादी जानकी की एंट्री कब है? कराची में। ये लोग तो पहले ही आ गए हैदराबाद में, इनकी एंट्री इधर, क्योंकि बंधन थे, पति, ये वो, बहुत क्या 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 कुछ ना कुछ हो ही रहा था। वो कुछ कोकर करता था, उस पर निगरानी रखता था, कभी कलकत्ता जाता था, फिर आता था, बीमार रहती थी, ये वो, और आखिर फिर जब उसने कह दिया कि नहीं तो मैं शादी कर लूँगा, दादी ने कहा जाओ कर लो, वो तब बंधन खत्म हुआ। तो ये सारी प्रोसेस में टाइम गया है। तो एंट्री कहाँ है? पहले लेट। और हमारी एंट्री कहाँ है? दादी ने पूछा मैं क्या करूँ, बाबा ने कहा 12 बार मुरली पढ़ो, दादी ने कहा अगर 24 बार पढ़ू तो लगन, शुरुआत से एक ही चीज का ध्यान रखा है दादी ने, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना, दोस्ती ऐसे लोगों से करना, संग ऐसे लोगों से करना जिनका इंटरेस्ट किस में है, ज्ञान और योग में। ये जो आनंदी बहन थी उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता था, दृष्टि देती थी सबको, योग युक्त तो दृष्टि, किकनी बहन आएंगे आगे, तो ये इसी में इंटरेस्ट था, ये उनके दोस्त थे बचपन से शुरुआत से। तो हमारे भी मित्र ऐसे होने चाहिए जिनके संग हम रहते हैं, जिनको ज्ञान और योग में रुचि है। जिनको ज्ञान योग में रुचि नहीं है वो किस में होते हैं, सेवाओं में होते हैं, केवल सेवा, खाना पीना सेवा, और ये केवल सेवा 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 देहभान में लाती है, क्योंकि उसके पीछे का आधार ज्ञान योग है ही नहीं। दादी प्रकाशमणि ने कभी पूछा था मोहिनी बहन से, इस विश्वविद्यालय में कितने सब्जेक्ट हैं? मोहिनी बहन ने कहा था ज्ञान योग धारणा सेवा। दादी ने पूछा पहले नंबर का कौन सा है? मोहिनी बहन ने कहा दादी ज्ञान। दादी ने कहा ज्ञान का आधार भी क्या है, पर बिना योग के ज्ञान भी नहीं है, इसके लिए फर्स्ट सब्जेक्ट है योग। जिनको योग में ही इंटरेस्ट नहीं है वो सेवा भी कितनी करे, वो उसमें संघर्ष होगा, उसमें मैं आएगा, उसमें अहंकार आएगा, उसमें व्यर्थ चिंतन चलेगा। सेवा के समाचार सुनाते सुनाते साथियों की कमजोरी का वर्णन करना, पांच बातें बताई थी ना उस दिन मुरली में, व्यर्थ बोल की परिभाषा है, पहला टॉन्टिंग, दूसरा पहला हंसी मजाक लिमिट से ज्यादा, दूसरा टॉन्टिंग, तीसरा न्यूज, चौथा समाचार शेयर करते करते कमजोरियों का भी वर्णन, और पांचवा अयुक्ति युक्त बोल। ये सब चीजें यहां आ जाती है फिर और नष्ट कर देती है। इसके लिए ये बात मेरे काम की है कि नहीं है पहले ये सुन लो, दूसरा ये सत्य है कि असत्य है, तीसरा ये मेरे ये कितनी फायदे की है मेरे। अगर साधु वासवानी जी ये सब जो जिन्होंने उनको भड़काया वो बहुत, क्योंकि इस तरह से भड़काया कि उनको वो दूसरा पक्ष सुनने का समय ही नहीं मिला, एक ही पक्ष को सुना। हाँ अगर सुनना भी पड़े तो फिर दोनों पक्षों को सुनो, इसकी भी बात सुनो जो इसके बारे में कह रहा है, फिर इसकी भी सुनो, तो वो जजमेंट इम्पार्शियल होगा। आपको अगर जजमेंट देना है तो, नहीं तो कोई काम ही नहीं है सुनने का। अगर उस पोजिशन में है कि हेड है और निमित्त है कुछ आत्माओं के और उनके बीच में कलह संदेह ये हो रहा है और हमें निर्णय देना है, तो दोनों पक्षों की दोनों बातें सुननी है, उसके बाद ही कोई निर्णय देना, और निर्णय देने में जल्दी नहीं करना है। जीसस क्राइस्ट कहता है जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड, जज नहीं करो दूसरों को, वेट, डिले कर दो जजमेंट को, उसके बाद ही। तो क्या सीखेंगे इससे, ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। कुछ भी बातें हमको बताई जाए अंदर ही अंदर सोचना ये मेरे काम की है, सत्य है असत्य है, ये इसको ही तो पता नहीं है सत्य है कि इसने कहीं से सुनी है, इसने उससे सुनी, उसने उससे सुनी, उसने उससे सुनी, कहाँ से कहाँ तक बात आ गई है। इसके लिए बाबा मुरलियों में क्या कहते हैं, परचिंतन पतन की जड़ है। 21 जनवरी 1969 फर्स्ट अव्यक्त मुरली, बाप दादा और यज्ञ, और कोई शब्द नहीं, बस ये दो ही है, और कुछ सुनो ही नहीं, और सेवा, बस यही सब कुछ है। तो आज सारे दिन भर का पुरुषार्थ, ट्रिपल TFT, ट्रिपल फिल्टर टेस्ट, कुछ भी इधर उधर का सुनना नहीं। इंग्लिश ट्रांसलेशन है किताब का आदिदेव, इस चैप्टर को नाम दिया गया है असाधुस पुअर जजमेंट, असाधुस पुअर जजमेंट। पर वो भी क्या करे, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, पूरा सिंध उनके खिलाफ बोल रहा था और एविडेंसेस ऐसे थे, वैसा दिख रहा था, पर फिर भी उनके मन में था कि उन बहनों के प्रेजेंस में मैंने जो एक दिव्यता का अनुभव किया वो बहुत बड़ी अनुभूति थी, इसीलिए तो तुरंत जाने को तैयार हो गए थे। पर बाद में वो खो गया, ओवरपावर हो गया इमोशंस, और फिर यही साधु वासवानी जी 1948 में कहाँ आ गए, पूना में आ गए, यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े काम किए, और 66 में इन्होंने शरीर छोड़ा, और इनके बाद इनकी गद्दी पर जो बैठे वो थे JP वासवानी जी। जो कि अत्यंत विनम्र, ये दादी जानकी के साथ उनका फोटो है। दादी जानकी इनसे कई बार मिली है, सबसे पहले तो कनाडा में जब इनका फ्रैक्चर हो गया था, इलाज के लिए वहाँ गए थे। दादी जानकी कहती, अरे ओ माय कॉमरेड, ये क्योंकि दादी को इनके लिए बड़ा सम्मान था, वासवानी जी के लिए, साधु वासवानी जी के लिए, उस समय भी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि चाहे कोई कैसा भी हो अतीत में, अभी हमारे सभी मित्र हैं। एक तो वहाँ मिली 2010 में, फिर 2011 में पुणे में मिली उनसे, हाथ मिलाया बहुत। और ये जो व्यक्ति थे जेपी दादा वासवानी इनको कहते हैं, इनका तो इतनी महिमा है। इनकी बस एक ही विशेषता है, विनम्रता, निरंकारी भाव, कोई अहंकारी नहीं। जिसके लिए इनके ये जो मिलन हुआ इन दोनों का, और इनके जो लोगों ने इनके विषय में लिखा कि संसार की सर्वोत्तम दो महान आत्माएं एक साथ मिल रही है, परमात्मा के दो प्रेमी मिल रहे हैं। और वो दादी उस सभा में एक चीज कहती है, एक है जोर से वहां पर दादी का जो उनकी सभा में जो भाषण हुआ वासवानी जी के, वहां पे दादी ने कहा, पूरी गैदरिंग जो भक्तों की थी वहां पे, एक ही है, एक को याद करना है। तो इनके बहुत सारे सिंधी में भी प्रवचन है, बहुत सारी बुक लिखी गई है। ये भी जेपी वासवानी, इन्होंने भी अभी शरीर छोड़ दिया। और माउंट में भी ऐसे ही एक, इन जैसे ही एक महान व्यक्ति, जिनको नक्की पे कई बार आप लोगों ने घूमते हुए देखा होगा, श्याम दादा हॉस्पिटल में भी कई बार एडमिट थे, उनके भी प्रवचन होते रहते हैं। तो ये सब लोग उधर के हैं, सिंध के, जिन्होंने भगवान के मार्ग पर ये लोग आगे बढ़ते रहे, किताबें लिखी, भक्ति मार्ग है। जरूरी नहीं है कि वो इस ज्ञान को समझ ले, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सब कहा है कि कैसे भगवान तक पहुँचना है तो क्या, और उनके आचरण में बहुत दिखता है। शिवानी बहन भी मिले हैं इनसे, जेपी वासवानी जी से, और उन्होंने अपना अनुभव भी शेयर किया है कि कितना उनके प्रेजेंस में, जैसे उनके डिवाइन वाइब्रेशंस इतने पावरफुल थे जेपी वासवानी जी के। तो संसार में महान आत्माएं सब जगह है, और हमें सबका सम्मान करना है, पर यह ट्रिपल फिल्टर टेस्ट को नहीं भूलना। तो यज्ञ इतिहास में ये भी एक चैप्टर रहा है 7 मार्च का। और फिर बाद में इन सब ने मिलकर, फिर पुलिस आई और इन सबको लेके चली गई जो कहा, और फिर ये लोग शांत तो बैठने वाले थे नहीं, इन सब ने फिर मंत्रिमंडल को हिलाया, मंत्रिमंडल तक पहुंचे, जो कल हमने बताया था। और फिर एक नया अध्याय जिसकी चर्चा कल करेंगे, उन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाया जिसमें क्रिमिनल एक्ट के द्वारा ओम मंडली को आउटलॉ कर दिया, बैन कर दिया पूरा। उसके उत्तर में फिर ओम राधे ने वो जो किताब है इज दिस जस्टिस वो लिखा, 250 से भी बड़ी पेजेस, बहुत बड़ी किताब है वो। उसके रिप्लाई में भी उन लोगों ने एक दूसरी किताब भी लिखी है, इन रिप्लाई टू इज दिस जस्टिस। तो ये सब लीगल, वो बहुत हाई फाई बुक है, लीगल सारा उसमें है, बहुत सारी चीज़ें कि कैसे अन्याय, कैसे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे ट्रिब्यूनल की, और कैसे बैन कर दिया, और फिर बैन करने के बावजूद भी, फाइनल तो बैन कर दिया के बावजूद भी संस्था काम करना चालू थी, पर फिर बाद में विश्व युद्ध हो गया, ये चल रहा, वो चल रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और फिर एक अंतिम प्रयास किया गया, उसके बाद में एकदम सब शांत हो गया इस संस्था के खिलाफ। वो कौन सा था अंतिम प्रयास? एक अंतिम प्रयास, द अल्टीमेट, द फाइनल, सब कुछ कर लिया हो एंटी ओम मंडली ने, पर एक अंतिम प्रयास किया। फिर ये तो यहाँ पहले तो ओम राधा को कोर्ट में बुलाया, उसके बाद में ये मार्च किया, यहाँ पर पूरा रेड डाल दी, जैसे कि एक रीति से आक्रमण कर दिया। तीसरा वो ट्रिब्यूनल, और चौथा एक लास्ट एंड द फाइनल, उसके बाद में फिर शांति शांति हो गई। अटेम्प्ट टू मर्डर, एक सिख व्यक्ति को दादा लेखराज को मारने के लिए भेजा, वो लास्ट था, क्योंकि सब कुछ कर लिया, अब क्या करें, अब गवर्नमेंट भी शांत हो गई, गवर्नमेंट ने नहीं किया, फिर बाद में गवर्नमेंट भी ध्यान देना बंद कर दिया। तो ये सब बात है, फिर वो एक लास्ट अटेम्प्ट किया गया, पर वो जो व्यक्ति आया वही इसके लिए जो कहते हैं ना, ये सही कहते हैं, सूरमा कुछ तो हो जाता है यहाँ आके, जो आया वो मधुबन में जो आया वो मुश्किल से। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है, प्रकांड पंडित, अत्यंत ज्ञानी। वो कहता है मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, ऐसे मेरे पास 11 प्रश्न है, अगर आपने उत्तर नहीं दिए तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, मुझे उत्तर अभी के अभी चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं उत्तर, उसको तो, उनको तो पता है किस प्रकार के प्रश्न होंगे। वो कहते हैं उत्तर मैं दूंगा, पर एक साल तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा चुपचाप, एक साल के बाद मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। पीछे एक दूसरा भिक्षु बैठा हुआ है, वो पीछे पीछे हंसता है, कहता है बिल्कुल इनकी बातों में मत आना, जो उत्तर तुमको चाहिए अभी ले लो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह आया था, आज 30 साल हो गए मैं फंस गया। ये आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, जो पूछना है अभी पूछ लो, मैं भी ऐसी तरह तुम्हारी तरह आया था, सारे शास्त्र पढ़कर, सारे इधर उधर के, और मैंने, इन्होंने कहा था 1 साल रुको, आज 20 साल हो गए, और फिर ये पूछते रहते कोई प्रश्न, पर अभी मेरे पास प्रश्न ही नहीं है, इसलिए तुम ये गलती मत करना। वो व्यक्ति रुक जाता है, 1 साल कुछ नहीं बोलता है बराबर, फिर 1 साल के बाद तो वो भूल भी गया कि उसके पास कोई प्रश्न थे। बुद्ध ही खुद बुलाते, बोलो तुमने बोला था प्रश्न, मैं तैयार हूं। वो कहते अब क्या पूछूं, प्रश्न ही खो गए, प्रश्नों के उत्तर थोड़ी दिए जाते हैं, प्रश्न को नष्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चंस आर नॉट टू बी आंसर्ड, दे आर टू बी डिस्ट्रॉयड। इसके लिए ब्राह्मणों के मन में जितने प्रश्न हैं ना, किसी का कोई उत्तर नहीं है। प्रश्न ही खत्म हो जाए ये मार्ग है, प्रश्न ही नष्ट हो जाए ये मार्ग, ये है मार्ग। ये कहानी थी साधु वासवानी जी की, TL वासवानी, JP वासवानी, मीरा स्कूल ऑफ एजुकेशन, मीरा सखी सत्संग, सखी स्टोर, और TFT ट्रिपल फिल्टर टेस्ट, और प्रश्न नष्ट हो जाए। किसी भी प्रश्न का कभी उत्तर नहीं मिलेगा, प्रश्न ही खो जाए, ऐसा कुछ करो कि प्रश्न रहे ही नहीं मन में, और निश्चय, और संघ कैसा हो, जैसे दादी जानकी ने ध्यान रखा अपने संघ का शुरुआत से, सारी बुद्धि किसमें थी, केवल और केवल ज्ञान योग में, ज्ञान और योग में, ज्ञान और योग में, और कोई विचार नहीं। दादी कहती है मुझे बाबा के 4 चित्र निरंतर आंखों के सामने घूमते रहते हैं। कौन से 4 चित्र? पहला, तपस्या में बैठा हुआ बाबा, ब्रह्मा बाबा इन तपस्या। दूसरा, नारायण की तरह अनंत आसन में। ये 4 चित्र मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं, पत्र लिखता हुआ। तीसरा, पत्र लिखता हुआ, इस पर भी काम करना है, कितना अच्छा अभ्यास है, पत्र लिखता हुआ। चौथा, पहाड़ों पर लेटा हुआ, नशे में, खड़ा हुआ या लेटा हुआ, नशे में एकदम। एक तो वो भी है, वो जो कहा कि ऐसा अनंत विष्णु की तरह, नारायण की तरह। दादी कहती है 4 चित्र जो है मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ इनको। तो हर यज्ञ के, हर चीज जो हुई है, हर वाक्य, हर घटना, हर इवेंट, उससे कुछ ना कुछ चैप्टर सीखना। इसलिए कल भी कहा था, इतिहास हम 3 चीजों के लिए, ये सीरीज किस लिए चल रही है, पहला जानने के लिए, दूसरा महसूस करने के लिए, फील करने के लिए, और तीसरा उससे सीखने के लिए। अभी अभी मैं सीखूं, क्योंकि ये सारी घटनाएं अभी चल रही है, अभी भी हो रहा है, अभी भी भड़काने वाले लोग यहाँ पर सब जगह है, ज्ञान योग से हमको दूर ले जाने वाले, पर छोड़ना नहीं है कुछ भी हो जाए। हाँ, इतिहास, क्योंकि कुछ भी करो उसके हर पॉजिटिव नेगेटिव पक्ष होते हैं, परंतु इतिहास डिटेल में इसके लिए जानना है कि हम उससे सीखे। फिर से वो गलती हमसे, दोज हु डू नॉट रीड हिस्ट्री आर कंडेम टू रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ हिस्ट्री। जो पढ़ते नहीं है, वो जो गलती वहां हुई है वो फिर से वो दोहराते हैं। इसके लिए हजारों बातें आएगी, पर वो ट्रिपल फिल्टर टेस्ट लगाना मेरे काम की है, कहाँ से सुना तुमने, कहाँ से, वो कितनी सत्य है, और तीसरा फायदा क्या है मेरा, ये मेरे ज्ञान योग में मुझे आगे बढ़ाएगी क्या, नहीं तो रिजेक्ट। क्या इससे मेरा फायदा होने वाला है, नहीं, रिजेक्ट। वो चीज़ जो हमें ज्ञान योग में बढ़ाई, बस उसी को पकड़ना है और आगे बढ़ना है। ओम शांति।
नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों, जागो नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती है। नया इतिहास बनता है, अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है। सकल जन मुक्त होंगे एक दिन, निश्चित समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।